Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. Hari स्वभावादासुते पदनख विभायस्य सुफलम् जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः स्मरामि प्रातस्तम् भुवन महनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ॐ नारायण 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 नारायण
मांडलोक के उपनिषद के हृदय में अब प्रवेश करना है। ये सातवां मंत्र जो है यही उसका हृदय है। आत्मा का साक्षात्कार अथवा ब्रह्म ज्ञान यदि करना हो तो इस सातवें मंत्र का अच्छी प्रकार से भाष्य और जिस किसी का प्रवचन आप पढ़ते हो मतलब गुरुमुख से उसको श्रवण कर लीजिए और फिर विचार कीजिए तो निश्चय ही आपको रोशनी प्राप्त होगी। प्रारंभ किया था कि ओम पर ब्रह्म का नाम है तो ओम तो हुआ नाम और ब्रह्म हुआ नामी। तो पहले ये भावना कराई कि सब ओम है और दूसरे मंत्र में कह दिया कि सब ब्रह्म है अर्थात नाम और नामी एक ही है। अब इस पर विचार कीजिए कि सब कहते हैं कि सब ब्रह्म है ऐसा कौन सा संप्रदाय है भारत का चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो निराकारवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो द्वैतवादी कोई भी हो सभी कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है सब परमात्मा और अद्वैत वेदांत भी कहता है कि सब ब्रह्म है तो दोनों में एक ही बात है क्या बोले आप भी आपका भी तो यही निष्कर्ष है कि सब ब्रह्म है ब्रह्म ही वेदम सर्वम हम भी यही कहते हैं कि सब ब्रह्म है तो भाई महाराष्ट्र कहते हैं कि सब धान 27 पसेरी नहीं होते हैं, हर एक दर्शन का एक विशेष प्रक्रिया भी होती है और विशेष प्राप्तव्य भी होता है। अब जो अद्वैत वेदांतियों को छोड़ करके जो लोग कहते हैं सब ब्रह्म है, लेकिन अभी तो हमको ब्रह्म का दर्शन करना है, जब सब ब्रह्म ही है तो इतने रूपों में दर्शन हो रहा है, अब और काहे का दर्शन करना है भाई? तो आप अपने ही वाक्य को अपने ही एक्टिविटी से जो है गलत सिद्ध कर रहे हो, सब ब्रह्म है और अभी हमें ब्रह्म का दर्शन करना है। तो वो सबको सच्चा मानते हैं, ब्रह्म से अलग सबको सच्चा मानते हैं और ब्रह्म को सबसे अलग सच्चा मानते हैं और एक सच्चे को दूसरे सच्चे के ऊपर चढ़ा करके फिर कहते हैं कि सब ब्रह्म है। रस्सी भी सच्ची है और सांप भी सच्चा है। अब रस्सी के ऊपर सांप चढ़ बैठा तो इसलिए कहो भाई, जब रस्सी से अलग सांप की उपलब्धि नहीं होती है तो यूं ही कहो ना कि रस्सी भी सांप ही है। अच्छा, इसमें रस्सी सांप वाला वो दृष्टांत नहीं देंगे। वो क्या दृष्टांत देंगे? आभूषण स्वर्ण वाला। आभूषण भी स्वर्ण है और स्वर्ण भी आभूषण में होता प्रोत है। तो भागवत जी में लिखा कि भले ही उसमें आभूषण में नाम रूप कल्पित किए गए हों, लेकिन कल्पित है इसीलिए क्या कोई आभूषण को छोड़ देता है? तो सोना समझ करके उसको ग्रहणी करता है। तो आप नाम रूप मिथ्याएं नाम रूप मिथ्याएं इसको गाते रहते हो और संसार को छोड़ देते हो ना? तो आपने तो ब्रह्म को ही छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्म भी तो सब है। ये आक्षेप है। तो कहते हैं कि भाई रज्जु सर्प का दृष्टांत भी तो लो, ब्रह्म के जो दृष्टांत है वो भी तो लो। तो सांप तीन काल में रस्सी में है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, लेकिन जिस समय सांप दिखता है उस समय रस्सी नहीं दिखती, और जिस समय प्रकाश में रस्सी दिखती है उस समय सांप नहीं दिखता, या दोनों दिखते रहते हैं? एक ही दिखता है ना। तो जिसको आप जगत बोल रहे हो वो जगत तभी तक है जब तक कि आप उसके अधिष्ठान ब्रह्म को नहीं समझते हो। ब्रह्म में तो जगत नाम की कोई चीज है थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, लेकिन इसी जगत की कॉपी भरने में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसको इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा। जो चीज है ही नहीं तो उसकी उपयोगिता क्या है? नहीं बोले उपयोगी तो है, बस यही घुंडी है ना। इसी को अज्ञान बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं। जो चीज है नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसको उपयोगी मानना ये बुद्धि का दिवालियापन है। मगर सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस वस्तु को अनुपयोगी समझ करके छोड़ दे। इसलिए शास्त्र कहता है कि भाई जब तक ये हिम्मत ना आवे तब तक पकड़े रहो और ये भावना करो कि ये परमात्मा ही है। तो इस बात को समझना चाहिए कि सब ब्रह्म है, इसमें सब जो है वो ऐसा ही है जैसे रस्सी में सांप है। अच्छा चलो खैर, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते, थोड़ी कल्पना। मरते हुए आदमियों को तो देखा ही है हमने, हमारे सारे बुजुर्ग लोग चले गए, क्या साथ ले गए? जिस दुनिया को आप सच्ची बता रहे हो उसमें से एक अंश भी उनके साथ गया? और हमारे साथ भी नहीं जाएगा। तो इतना सोच के ही वैराग्य तो उत्पन्न होता है ना, शास्त्र से न सही प्रैक्टिकल विजडम तो है ना। महात्मा ने किसी सेठ को ज्ञान देना था, क्या सेवा करूं महाराज? बोले ये भैया हमारे पास सुई है, इसे तुम रख लो, जब स्वर्ग में मिलेंगे तो दे देना हमको। अब वो तो भाई खाते में लग रहा था अपना, तो उसने सुई उठा के रख ली, बोले ठीक है साहब दे देंगे। फिर उसे ख्याल आया, अरे बुला 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 महात्मा बुला। ये महाराज स्वर्ग में जाएंगे हम, ये तो आपने चलो अच्छा कह दिया, नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मगर ये सुई तो यही रह जाएगी, सुई तो हमारे साथ में जाएगी नहीं फिर। अरे तो बेवकूफ, यही तो समझाना चाहता हूं मैं। सुइयों का ढेर इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? सुई चाहिए, मांग के भी काम कर सकते हो, या एक सुई ले लो और उससे अपना काम चला लो। तो ये कहते हैं कि सोए महात्मा चतुष्पाद। अब ये ध्यान रखना है कि अधिष्ठान में, ब्रह्म में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो वैसा सत्य नहीं है जैसा ब्रह्म सत्य है, वो प्रातीतिक सत्य है, मालूम पड़ता है सत्य जैसा। तुलसीदास जी की चौपाई बहुत बढ़िया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाय। ब्रह्म में ये जड़ माया जो है वो है नहीं, लेकिन ब्रह्म इतना सच्चा है कि वो जड़ माया भी सच्ची जैसी प्रतीत होती है। सच्चाई माया की नहीं है, सच्चाई ब्रह्म की है, और सच्ची हो करके वो जीवों को बांधती है, मोह उत्पन्न करती है। अगर आप माया को झूठी समझ लें तो उससे बंधेगा नहीं कोई। बोले हम तुझे रस्सी से बांधे देते हैं, कि बांध दे, देखा कौन सी रस्सी है, और उसने ऐसे ऐसे किया तो समझ रहा है कि तो वैसे ही नाटक कर रहा है ही नहीं, इसके पास रस्सी है। और अगर ये भ्रम हो गया कि इसके पास रस्सी है तो हम तो बंध गए, और जब तक वो खोलेगा नहीं तब तक खुलेंगे नहीं। जो बांध है सो छोड़ है, भगवान ने बांधा है, जब वो ही छोड़ेगा तब ही छूटेगा। अरे किसने बांधा है? भगवान को क्या पड़ी है जीव को बांधने के लिए? कोई मजा आता है? सब मैलिशियस प्लेजर लेता है। किसी ने नहीं बांधा, अविद्या ने भी नहीं बांधा, लेकिन यही तो सारा माया, इसी को कहते हैं कि जो चीज जहां जो नहीं है, जैसी नहीं है, वहां वैसी प्रतीति हो जाए वो बंधन का खेल है तो बंधन मालूम पड़े, मुक्ति का खेल है तो मुक्ति मालूम पड़े। अच्छा मान लो कोई महात्मा मुक्त हो गए तो क्या पहले बंधन में थे वो? आत्मा तो सबकी हमेशा से मुक्ति ही है, सिर्फ वो समझते नहीं थे कि मैं आत्मा हूं, अब उनको ये पक्का हो गया कि मैं तो आत्मा ही हूं, इसलिए मैं नित्य मुक्त हूं। नित्य मुक्तता का अनुभव होता है, मैं पहले बंधा हुआ था अब मुक्त हो गया, ऐसा अनुभव नहीं होता। नारायण तो स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये स्वयं माने वह ब्रह्म और आत्मा माने ये जो मैं है, ये चार पादों वाला है। तो तीन पाद तो इसके बता दिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इसमें विश्व तेजस प्राज्ञ और समष्टि में इनके इक्विवेलेंट्स विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। अच्छा अब हम तो समापन की ओर ही चल रहे हैं, अब तो इतने दिन में जो समझा हो, पहले बच्चे पहाड़े याद करवाते थे ना छोटी क्लास में, आजकल तो कोई पहाड़े याद ही नहीं करते हैं, सबने कैलकुलेटर हाथ में ले रखे। तो पहाड़े याद करते थे तो फिर वो टीचर जो थे वो कहते थे पटक पूछेंगे, पटक। तो क्या 56 7 8 56 अब वो जब तक उसने ठीक तरह से याद नहीं किया होगा तो इधर उधर वो नहीं लगा सकता। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये विश्व और विराट इनमें आपस में क्या संबंध है? चलो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है ना तो मुझे ही बोल लेना, मन मन में उत्तर दे लेना। तो विराट का हिस्सा है क्या विश्व, या विश्व को खींच तान करके विराट कर दोगे? दृष्टिकोण है, एक शरीर में यदि आपने अपनी दृष्टि बांध ली तो आपका नाम विश्व है, और समष्टि में आप जा नहीं सकते हो, इस बुद्धि से तो जा नहीं सकते हो, लेकिन अपनी इस सीमित बुद्धि का अभिमान छोड़ सकते हो। अरे मैं तो जग रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग सो रहे हैं। समष्टि में तो यही विचार करोगे ना, तो कौन जग रहा है, कौन सो रहा है? तो जो समष्टि है जागृताभिमानी, वो तो नित्य जागृत है नारायण। तो इस मैं से जब हम अपना अभिमान निकाल लेते हैं तो हम अपने आप ही विराट हो जाते हैं, यही विराट का अनुभव है। और ऐसा सोचोगे कि मैं विराट शरीर से बाहर, तो ये भाव तो है नारायण, लेकिन भाव ही भाव है। इसका परिणाम मालूम है क्या होगा? बस इसका परिणाम ये होगा कि सबकी सेवा करो। सेवा के लिए आप ऐसा मान लो तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो फैलाने से काम नहीं चलेगा, सिकोड़ने से काम चलेगा। विराट, विराट को सिकोड़ो तो विश्व, और विश्व को भी सकोड़ो भीतर, तब आत्मा पर पहुंचेंगे। ये जो सिकोड़ने की प्रक्रिया है इसी को निषेध प्रक्रिया बोलते हैं। निषेध माने अस्वीकार करते जाओ, जैसे हां जी करते हैं ना, तो वो तो स्वीकार की बात है, और ना जी करते जाओ, ये इसी को निषेध बोलते हैं। मैं बोले कोल्ड ड्रिंक लेंगे? नो प्लीज। अच्छा तो कॉफी ले लीजिए? नो प्लीज। No, बोले आप कुछ भी नहीं लेते हैं, खाएंगे क्या? बोले आज हमारा उपवास है। वो चुप हो जाएगा। तो जब आप ये कह दो कि मैं तो अभोक्ता हूं, मैं तो आकर्ता हूं, तो किसी की क्या हिम्मत है कि जो आपके मुंह में जबरदस्ती रख देना है। इंद्रियों में जब हम भोगने की इच्छा भीतर होती है तभी इंद्रियां बाहर की तरफ निकलती हैं। स्वप्न में भी बाहर ही निकलती हैं लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलती। मन में बैठी हुई इंद्रियां मन के भीतर ही घूमती रहती हैं। जैसे घर में मान लो कई कमरे हों तो कमरों में घूम घूम के, पहले बचपन में तो माताएं रोटी गोल करके जो है माऊ 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 करके सारे घर में घूमते रहते थे, खाते रहते थे। यही स्वप्न है रहा है। और खाते खाते घर से बाहर निकल जाओ, यही जागृत है। तो इंद्रियां जब भीतर ही भीतर अपने रहती हैं मन के भीतर ही, तब इसको स्वप्न बोलते हैं। और जब शरीर से बाहर निकलने लगती हैं तब इसको जागृत बोलते हैं। अब फिर मां कहती सो जा, सो गए। जब इंद्रियां ना बाहर निकलती हैं ना भीतर निकलती हैं, सुषुप्ति हो गई या अपने आप ही मन में आ गई है कि थक गए अब तो सो गए। तो बहिष्प्रज्ञता ये विश्व में है बाहर निकलना, अंतःप्रज्ञता ये स्वप्न में है माने तेजस में है, और घन प्रज्ञता प्रज्ञान घन ये सुषुप्ति में है। अब इसमें आत्मा क्या रहा? रस्सी में पहला सांप दिखा, डर के भागे, फिर माला दिखी, फिर पकड़ने को दौड़े, फिर भूछिद्र दिखा जमीन की दरार, तो उपेक्षा करके आगे बढ़ गए। यही तीन बातें होती हैं ना संसार, हे उपाधेय और उपेक्षणीय। सारा व्यवहार इन्हीं तीन चीजों में है। तो भाष्यकार कहते हैं कि हे उपाधेय और उपेक्षणीय, तो सुषुप्ति में यद्यपि वहां आत्मा अपेक्षाकृत शुद्ध रूप में रहता है, अपेक्षाकृत अत्यंत शुद्ध रूप में नहीं रहता, अपेक्षाकृत रहता है, लेकिन सुषुप्ति के बारे में तो कभी विचार ही नहीं करते। और स्वप्न भी यदि अनुकूल हो तो विचार करते हैं, प्रतिकूल हो तो उसका भी विचार नहीं करते। या महाराष्ट्री जब रहते थे तो एक नाई था बार्बर जो उनका बाल बनाता, तो एक दिन वो लेट आया। तो महाराज जी ने पूछा भाई आज लेट कैसे हो गए? बोले क्या बताऊं, सुबह जो है नींद लग गई सपना देखने। क्या सपना देखने लगा? बोले महाराज जी इतना डर लगा, एक सांप काला जो है वो काटने के लिए दौड़ा, मैं भाग रहा हूं। महाराज जी बोले कि ये बता काटा कि नहीं? कि नहीं काटा तो नहीं। अरे काट लेता तो अच्छा रहता। बोले क्यों? कि सपने में यदि सांप काट ले तो जागृत अवस्था में उसे धन का आगम होता है। अब पहले दिन तो वो सपने में जो है उस सांप से डर रहा था। जब महाराज जी ने ये सुना दी बात तो अगले दिन से वो जानबूझ कर सपने में सांप दिखे और वो काट ले। क्यों? क्या सपने, वही सपना याद रखते हैं, वही सपने के बारे में सोचते हैं जो हमारे अनुकूल हो। विचार में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखी जाती, विचार में तो उसकी सत्यता असत्यता देखी जाती। तो और जागृत, जागृत में दिमाग को फुर्सत ही नहीं है। यद्यपि आत्मा विश्व विराट के रूप से जागृत में मौजूद है, तेजस हिरण्य गर्भ के रूप से स्वप्न में मौजूद है और प्राज्ञ ईश्वर के रूप से सुषुप्ति में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते। सांप दिखता है तब भी रस्सी दिखती है, माला दिखती है तब भी रस्सी दिखती है, भूछिद्र दिखता है तब भी रस्सी दिखती है। अब किसी ने कहा भैया ये सब कुछ नहीं है, ये रस्सी है, कि मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, अब वो टॉर्च निकालता है या भगवान की कृपा से बिजली चमकती है, तो जैसे ही रोशनी हुई उसने तो कह दिया कि ये सांप भी नहीं है, माला भी नहीं है, भूछिद्र भी नहीं है, रस्सी है। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, अब बिजली चमकने की जरूरत थी, तो बिजली चमकी तो रस्सी ही दिखी, बाकी चीजें तो दिखी ही नहीं। बोले हां तुम ठीक कहते। इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं ना। आत्मा कहीं से चौथी कोई चीज नहीं आएगी, इन्हीं तीन रूपों में जो ये आत्मा मिला हुआ है, यदि हम इनके उपलब्ध स्वरूप के प्रति नकार दें, निषेध कर दें कि ये वो आत्मा नहीं है जिसको शास्त्र आत्मा कहता है, यही नकारना है। गुरुजी ने तो कहा था कि आत्मा तो सबका अपना है, उससे तो भय नहीं लगना चाहिए, लेकिन जागृत में तो जितने विश्व हैं किसी से भय लगता है, किसी से प्रेम होता है। तो जैसे सांप से भय लगता है, माला से प्रेम होता है, ऐसा ही तो है और क्या है। तो अगर विश्व में आत्मा का दर्शन करना है तो ये राग और द्वेष, इनसे तो छुटकारा चाहिए ना।